আজকাল রাতের কাছে 25/4/1966 সোমবার বলে তার চলা থা ভোলেনাথ সে নিরালা ছিল বাপ বেঠ করতে বচ্চো কো সমঝাতে अभी बच्चों को ये तो मालूम है अच्छी तरह से कि वेद का बाप उसको ही कहा जाता है बिगड़ी सुधारने वाला। कौन है बिगड़ी सुधारने वाला? वेद के बाप भी दो है, एक है मनुष्यों का बाप, मनुष्य शक्ति का बाप, और दूसरा है आत्माओं का बाप। बिगड़ी सुधारने वाला कौन है? आत्माओं का बाप, क्योंकि जो वेद आत्माओं का बाप है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए बिगड़ने और संभलने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होगा। बाकी जो आत्माएं है वो सब जन्म मरण के चक्र में आती है, और जन्म मरण के चक्र में आते आते सुख भोगते भोगते नीचे गिनती जाती है। जिंदगी बिगड़ती जाती है, तो बताया जो वेद का आत्माओं का बाप है बिंदु बिंदु आत्मे बिंदी आदमी प्रकृति के मति में बिंदी लगाते हैं, इस मति में टिकने के लिए टीका लगाते हैं, सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माए उनकी बिगड़ी सुधारने वाला आत्माओं का बाप है। प्रश्न नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो खोला कला संपूर्ण भी बनता है, और फिर कलाएं करते करते कलाहीन चंद्रमा भी हो जाता है। नाम ही है कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, तो चंद्रमा से उपमा दी जाती है, जिसकी कलाएं सुधरती भी है और बिगड़ती भी है। बाकी कृष्ण को तो मोस्टली बच्चे के रूप में पूजा जाता है, इसलिए राम बाप को कहा जाता है। ये बात बड़ी अच्छी तरह ध्यान पर बच्चों को आना है कि दिन और रात सदैव गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, श्री गीता में ही ढेर सारे ऐसे श्लोक आए हैं जिनमें अव्यक्त निराकार बताया है भगवान को, और भगवान तो नरको नारायण बनाने वाला है, नारायण को सोना कला संपूर्ण दिखाया जाता है। सत्युग में नारायण का राज्य था। गीत गाते हे कृष्ण नारायण वासुदेव, तो कृष्ण को नारायण की पदवी भी मिलती है। जब बड़ा होता है नरसिंह नारायण बनता है, नर को नारायण बनाने वाला कौन? स्वयं तो नहीं बनता होगा, तो नर को नारायण बनाने वाला भगवान है, परंतु वो कलाती से कल्याण कर पांच कारी गया हुआ है, उसका नाम में बंधता नहीं है, कलाओं से परे है, जैसे सूर्य कलाओं से परे है, जैसे भगवान भी कलाओं से परे है, जो स्वयं कलाओं से परे है, जो ईश्वर संपूर्ण मनुष्य को बनाता है, गीता ज्ञान दे करके। तो गीता ज्ञान देने वाला कोई सोलह कला संपूर्ण कृष्ण नहीं हो सकता। कलाओं से जो अतीत है वही भगवान हो सकता है। और साथ में निकलने वाले जो अनेक मनुष्य हैं, भगवान तो एक ही है, वो एक ही सर्वकार सदगति दाता गाया हुआ है। जब इस सृष्टि पर आता है तो सर्व की सदगति करता है। वास्तव में शिव बाबा कहता है और कृष्ण उनकी सुंदर से सुंदर रचना शास्त्र में दिखाया हुआ भी है कि शिव बाबा ने कृष्ण को गोद में लिया बच्चे के रूप में, तो जो सतयुग सोलह कला संपूर्ण गाया हुआ है उस सतयुग में इस मनुष्य शक्ति वृक्ष का पहला पत्ता सोलह कला संपूर्ण कृष्ण दे, वो पहला शाहजादा है जिसके लिए गाया जाता है हे कृष्ण नारायण वासुदेव। वसु धन संपत्ति को कहा जाता है, वसुदेव ज्ञान धन संपत्ति देने वाले का नाम है और उसके बच्चे का नाम है वासुदेव। जैसे ब्रह्मा के बच्चों का नाम है ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर्स का नाम है वैष्णव, शिव के फॉलोअर्स का नाम है शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलोअर्स के अर्थ, बच्चा बाप को फॉलो करता है। सुमन कहता है और कृष्ण इस सत्य की पहली रचना है, पहला पत्ता। देखो अभी हम किसकी कितनी सीधी सीधी महिमा करते हैं और कहते हैं किसी कृष्ण ने गीता सुनाई है, अब श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत इंसॉल्वेंट बन गया, क्योंकि सूचक में साकार है, भगवान तो निराकार है, वो निराकार भगवान जैसे आत्म निराकार ज्योतिबिंदु है, ऐसे भगवान भी निराकार है। फर्क इतना है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती, 84 के चक्र में आकर के 84 जन्म भी लेती है, लेकिन भगवान जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण त्रिकालदर्शी है। वो हमारे अनेक जन्मों को जानता है। गीता में भी बोला है, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। अब सवाल है, श्री कृष्ण साकार का नाम डालने से भारत इंसॉल्वेंट कैसे बन गया, भीख मंगा बन गया, विदेशों से भीख मांगता है। इसका कारण है कि भगवान बाप की बदली जो गीता माता है, उस गीता माता में कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। उस कृष्ण बच्चे ने गीता ज्ञान लेकर के नारायण का पद पाया था, नर से नारायण बना था। भगवान तो निराकार है, और निराकार को दुनिया के देश विदेश के सभी धर्म वाले भगवान को निराकार मानते हैं। अगर गीता में निराकार परमपिता परमात्मा शिव का नाम होता तो सारी दुनिया के विधर्मी विदेशी गीता को गोली मान देते, बल्कि अपने धर्म ग्रंथों से भी जाति मान देते। भगवान तो स्वर्ग है, कहता है जो भी धर्म पिताए हैं, इब्राहिम बुद्ध है, तैस गुरु नानक, कोई भी स्वर्ग नहीं दे सके। हिस्ट्री बताती है 2500 साल की, उनके बहाने के बावजूद भी शक्ति पतन के व्रत में गए, रौरव नरक बनती गई। एक भगवान ही है जो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहता है, आर्थिक स्थिति तो जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग रचता है। स्वर्ग का अर्थ ही है स्वर्ण आत्मा गमन गया, कहाँ गया, आत्म की स्थिति में गया। जो भी देवताएं होती हैं सब आत्म की स्थिति वाले होते हैं, देवान वाले नहीं होते, देती इंद्रियों का उनको भान नहीं होता है, वो दैनिक सुख नहीं भोगते, वो तो अति इंद्रिय सुख भोगने वाले हैं। अगर इंद्रियों का सुख भोगते भी हैं तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगने के कारण उन देवताओं को आज भी श्रेष्ठ आचार्य कहा जाता है। मनुष्य भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगता है, इसलिए मनुष्य को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। राक्षसों की तो बात ही छोड़ दो, तो देखो ऐसा स्वर्ग का वर्षा देने वाला भगवान
और धर्म पिताओं की तरह निराकार ही है। जो और धर्म पिताएं आते हैं क्राइस्ट के चेहरे को देखो ध्यान से, महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो, उनकी आंखों की निराकारी स्टेज को देखो। वो सभी धर्म पिताएं बीज नहीं है अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के, उनसे धर्म की शुरुआत होती है। ऐसे ही सारी सृष्टि का जो पाप है, सारी मनुष्य आत्माओं का जो पाप है, जो भी सृष्टि पर आता है, तो जिस किसी साधारण तन में आता है, जैसे गीता में कहा गया मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूलमति नहीं पहचान पाते, तो जिस साधारण तन में आता है वो भी पहले मनुष्यों की तरह साधारण ही पुरुषार्थ भी होता है, निराकारी स्टेज वाला नहीं होता है। भगवान का तो विरुद्ध है, मैं आऊं तो बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाऊं। जैसे और धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, ऐसे ही उन धर्म पिताओं का बाप जो बापों का भी बाप है, वो एकदम निराकारी स्टेज में चित्रों में दिखाया जाता है। हम सब ने शंकर का चित्र देखा होगा, चेहरा देखा होगा, चेहरा देखने से ही निराकारी स्टेज स्पष्ट झलक में आती है। तो निराकार साकार में आकर के उसको आप समान बनाता है, तब उसका नाम देव देव महादेव शंकर पड़ता है। उससे तो पहले वो एक साधारण पुरुषार्थ ही है, इसलिए याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद में बैठा है मन कोई अपने से ऊंची चीज याद करेगा ना, वो भी भगवान की याद में बैठा है। इसलिए आप जज करिए कि दुनिया के जितने भी देवताएं हैं 33 करोड़ या त्रिवेद या जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, जितने भी राक्षस हैं, उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि में जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या नाम है? शंकर। शिव शंकर बोले नाथ। क्यों? शिव का नाम पहले क्यों, शंकर का नाम बाद में क्यों? क्योंकि शिव पिता है और शंकर उसका बड़ा बच्चा है। जो कहते हैं देव देव महादेव, त्रिवेदों में ब्रह्मा देव एक, विष्णु देव, और उन दोनों देवों से देव जो बड़ा है उसका नाम महादेव। माने 33 करोड़ देवताओं में से जो बड़े से बड़ा देवता है বহ মহাদেব শিবী দেবতা বন্ধে বালি দু আত্মে মনুষ্য সে দেবতা বনতে রে উনমে সে যো আচ্ছা সা আচ্ছা পুরুষার্থী শঙ্কর দেবতা দেবাত্মা হ্যা উসী মে প্রবেশ করতা আর প্রবেশ করতে কে বাদ দোনো আত্মে এক সমান হো জাতি বচ্চা বাপ সমান বন জাতা হে ইসলিয়ে শঙ্কর কে নাম কো শিব কে সাথ জোড়া জাতা পরন্তু শঙ্কর ভগবান নেই হে তো দেবতা হে মনুষ্য কো দেবতা ভগবান আকর কে বতা বনাতে जैसे गीता में लिखा है मैं साधारण तन में आता हूं इसलिए मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाते जाते भी है गुप्त देश में सतयुग रचने आए शिव भगवान अब तो जाग जाग इंसान क्यों गीता में तो लिखा है गीता महाभारत से निकाली गई भागवत में भी लिखा है कि कृष्ण तो द्वापर के अंत में आए थे अरे द्वापर में तो शास्त्रों में आठ कलाएं दिखाई गई बताते हैं कि सतयुग में 16 कला संपूर्ण मनुष्य होते हैं त्रेता में 14 कला मनुष्य होते हैं देवताएं और द्वापर में द्वैतवाद शुरू हो जाता है द्वैतवाद का मतलब यह है दो दो धर्म दो दो राज्य दो दो कुल दो दो जातियां हर बात में द्वैतवाद पैदा होता जाता है जब द्वैतवाद पैदा होता है तो आपस में झगड़ा होता है जगत ही हमारा धर्म अच्छा हमारा धर्म अच्छा हमारा देश अच्छा हमारा देश अच्छा और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते द्वापर के अंत में आते कलयुग तैयार हो जाता है कलह क्लेश का युग तो देखो सांस लिखने वाले मनुष्यों ने कितनी भारी भूल कर दी कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया अरे भगवान की इतनी ग्लानी क्यों करते भगवान तो गिरोहों को उठाने के लिए आता है पतितों को पावन बनाने के लिए आता है दुर्गति पाए हुओं को सदगति करने आता है तो द्वापर के अंत में आकर के कलह क्लेश वाली दुनिया बना के क्यों जाएगा वास्तव में भगवान को कौन सी दुनिया आने की जरूरत है कोई भी बात दुनिया का होता है अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है तो क्या नए मकान को तोड़ देता है मकान जब पूरा जर्जरीभूत हो जाता है तभी उसे तोड़ करके बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। ये भी सस्य रूपी मकान है। सस्य रूपी मकान को नया बनाने के लिए भगवान तब आता है जब कलयुग के अंत में इसकी चौथी अवस्था हो जाती है। दुनिया में हर चीज की, हर मनुष्य की चार अवस्थाएं जरूर होती हैं। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो, जैसे मनुष्य का जीवन। बचपन में कितना अच्छा, सत्व प्रधान जीवन, कोई विकार नहीं, काम विकार नहीं, क्रोध विकार नहीं, लोभ नहीं, शिशु को कोई अहंकार नहीं। फिर बड़ा होता है, किशोरावस्था आती है, माँ बाप के ही संरक्षण में पलता है, वो स्टेज नहीं रही जो शिशुपाल में थी। फिर कुछ अंश विकृति का शुरू हो जाता है। तीसरी अवस्था आती है रजो प्रधान, जैसे द्वापर को रजो प्रधान कहते हैं, ऐसी अवस्था आने पर विकार बुद्धि में घूमने लगते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बन जाता है। नौजवान स्टेज में इन विकारों को भोगते हुए अंत में चौथी अवस्था आ जाती है, बुढ़ापा। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, सुख भोगने की योग्य नहीं रहती है, तो भी मन में विकार प्रबल हो जाते, शरीर भी वृद्ध हो जाता है, कोई पास में रहना पसंद नहीं करता, तामसी जीवन हो जाता है। चौथी अवस्था में मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य सच्ची रूपी मकान है, सचयुग में 16 गला संपूर्ण, एकदम सुखी जीवन था। विकारों का नाम निशान भी नहीं था। फिर आता है त्रेता युग, दूसरी अवस्था, सत्व सामान्य जीवन। त्रेता के आज तक भी कलाएं बहुत धीमी गति से घटती है, क्योंकि इंद्रियों का श्रेष्ठ सुख भोगते हैं, ज्ञान इंद्रियों का। चौदह कला रह जाती। त्रेता के बाद जब द्वैतवादी युग आता है, ये द्वैतवादी धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं। इब्राहिम 2000 साल पहले, सवा 2000 साल पहले बुद्ध है, बौद्ध धर्म, उनके ढेर के ढेर फॉलोअर्स हुए, जैसे इस्लामियों के हुए, जा काम पे ट्रेन आया किसी अंदर ऐसे ऐसे करते करते एक के बाद एक अनेक धर्म पिताएं आते हैं और मनुष्य शक्ति को अपने अपने प्रकार की धारणाएं सिखाते हैं। दुनिया की एकता भंग हो जाती है। वो है रजो प्रधान युग जहां शक्ति में अच्छी तरह से विचार आ जाते हैं। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसमें चार युगों की आयु लिखी हुई है 1250 वर्ष सतयुग 1250 वर्ष त्रेता 2500 वर्ष सुखी जीवन राम कृष्ण जैसे देवताओं का राज्य होता है राम राज। परंतु मनुष्यों ने जो विकृत बुद्धि से शास्त्र लिखे उनमें राम राज्य में भी घोटाला कर दिया रावण घुस गया। अरे राम राज्य का इतना भारी वर्णन किया है तो रावण राज्य कहां से आ गया। रावण का मतलब ये है रावण से लोकान की रावण जो लोगों को रुलाता है उसे रावण कहा जाता है। राम कृष्ण तो देव आत्माएं हैं यथा राजा तथा प्रजा मुख्य रुलाने वाले हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तब ये मनुष्य के रूप में धर्म पिताएं आते हैं मानवीय धर्म पिताएं। उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। किसी भी धर्म पिता ने अपने को भगवान स्वीकार भी नहीं किया। गुरु नानक ने भी सदैव ऊपर की ओर इशारा किया है भगवान ऊपर वाला है ऊंची स्टेज वाला है। जाते भी है ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम और ऊंचे काम के आधार पर ऊंचा तेरा नाम। ऐसा ऊंचा काम करके जाता है जो दुनिया का कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाता। न इब्राहिम न बुद्ध न क्राइस्ट न गुरु न तो कोई भी नहीं शंकराचार्य क्या करता है नरक को स्वर्ग बना के जाता है। ये नरक की दुनिया है ही तमोप्रधान कलयुग। कलयुग के अंत में जब भगवान आता है तो दो काम खास करता है। एक तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना ब्राह्मणों की स्थापना ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब मुख में कोई मशीन थोड़े ही लग रही होती है जो ब्राह्मण निकल पड़े कूद कूद के। वास्तव में ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान को जीवन में जिन्होंने धारण किया मान्यता दी प्रैक्टिकल अपना जीवन बनाया उनको ब्राह्मण कहा गया। वो ही सच्चे सच्चे ब्रह्म की औलाद ब्राह्मण थे ब्रह्मा भक्त। हाँ ये बात जरूर है कि ब्राह्मणों की भी 9 पुरियां मानी गई है शास्त्रों में भी विख्यात है। जैसे दुनिया में 9 धर्म है, ऐसे ही ब्राह्मणों की 9 कुलियां होती ब्रह्मा की औलाद के रूप में। कोई ऊंचे कुली के ब्राह्मण है, कोई नीची कुली के ब्राह्मण। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो स्वर्ग 2500 साल, नरक 2500 साल, ये 5000 वर्ष की सृष्टि है, इसका प्रमाण महाभारत में दिया हुआ है कि 5000 साल पहले महावाली महाभारत ग्रह युद्ध हुआ। उग्र युद्ध के आसार आज भी भारत में मौजूद है। भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां आपस में झगड़ रही है, इतनी दुनिया के किसी देश में नहीं होती। भारत में जितना जातिवाद पनप रहा है, इतना जातिवाद और जातिवाद को लेकर आपस में भुड़पुट्टौल खून खराबा जितना होता है, उतना दुनिया के किसी देश में नहीं होता। स्टेट इस छोटे से देश में कितने स्टेट्स बना दिए गए, और अब तक भी वो राज्यों में बंटवारा होता जाता है। जितना ज्यादा बंटवारा होगा उतना ज्यादा झगड़ा बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादा बढ़ेगा। गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है, गरीब गरीब होते जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में भगवान भगवान है, भगवान गरीब निवास गाया हुआ है, वो गरीबों को ही उठाता है। साहूकारों को अगर उठाता भी है तो सिर्फ काम निकालने के लिए। जैसे कहते हैं 1936 में दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मावस्यों का स्थापना का कार्य शुरू हुआ। आज वो ब्रह्मा कुमार कुमारी सारी दुनिया में फैल गए। लेकिन वो ब्रह्मा दादा लेखराज साहूकार थे या गरीब थे? हीरों के कलकत्ते के प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनके द्वारा कार्य शुरू हुआ। जो जितना ही साहूकार होता है इस दुनिया का, वो ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता है, ईश्वरीय कार्य। या बाप आकर जिन गरीबों को चुनते हैं वो गरीब ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक ज्योतिषी ने भी लिखा है, भगवान जब आएगा तो बड़े छोटे छोटे लोगों के द्वारा सारी दुनिया में क्रांति फैला देगा। तो भगवान ना बाप आते ही हैं 3 मूर्तियों के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा कार्य की शुरुआत होती है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। नौ कुलियों वाले ब्राह्मण, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े नौ धर्म ही फैले हुए हैं, सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म कह देते हैं, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, शंकराचार्य के द्वारा संन्यास, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और इन सब धर्मों से कन्वर्ट होते हुए आने वाली आत्माएं आर्य समाज, उन सब धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया कि कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। और लास्ट में दुनिया में फैला धर्म के नाम पर अधर्म, वो धर्म है ही नहीं क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं। रशिया का नास्तिकवाद, उसको छोड़ दिया जाए, बाकी भगवान को कोई न कोई रूप में मानने वाले नौ धर्म हुए। और हिंदू ही कन्वर्ट होकर के और धर्मों में जाते रहे, दूसरे धर्म के कोई भी हिंदू नहीं बने स्त्री में, भगवान जब आते हैं तो उस समय हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके एक ब्राह्मणों के सूत्र में बांधते हैं। सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु अपने पूर्वजन्मों के कन्वर्शन के कारण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के संस्कार ग्रहण करने के कारण वो आत्माएं ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनती तो हैं, परंतु फिर भी नंबरवार कैटेगरी नौ कुलियों में चली जाती। अब सवाल है, भगवान आता है तो नौ कुलियों को प्रेफरेंस देगा या अव्वल नंबर जो कुली होगी उसको प्रेफरेंस देगा? ये मुसलमान आज भी गाते हैं अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की, दीन की स्थापना की। वो अव्वल नंबर धर्म जो है वो है ही सनातन धर्म, देवी देवताओं का धर्म, क्योंकि तो भगवान आकर नर से नारायण बनाने का ज्ञान देते हैं, देवता बनाने का ज्ञान देते हैं। ये देवता बनाने का ज्ञान, ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय दुनिया में कोई भी नहीं खोल सकता, ये एक भगवान ही है जो मनुष्यों को देवता बनाता है। राजयोग सिखाता है, गीता ज्ञान के द्वारा। और जैसे और धर्म पिताएं आए, उन्होंने कोई किताब लिखी थी क्या? इब्राहिम ने कोई एंजिल लिखी क्या? बुद्ध ने कोई किताब लिखी थी क्या? क्राइस्ट ने बाइबल लिखी थी? नहीं लिखी। उन्होंने तो डायरेक्ट आकर के मुख से सुनाया, बर्बली सुनाया। लिखा पत्ती की कोई बात नहीं। ऐसे ही वो धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का बाप, भगवान से भी सृष्टि पर जब आते हैं तो मुख से डायरेक्ट ज्ञान सुनाते, परंतु उनका अपना मुख नहीं है, अपना शरीर ही नहीं है, गर्भ से जन्म लेते ही नहीं है। इसलिए गीता में एक शब्द आया है, प्रवेशतुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है, परंतु भूत प्रेत आत्माओं का दिव्य जन्म नहीं होता है, और भगवान का तो दिव्य जन्म गाया हुआ है। कैसा दिव्य जन्म? भूत प्रेत आत्माएं आती हैं, तो जिसमें प्रवेश करती है उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है, एक्ट बदल जाती है, आंखों की रोशनी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उनका सबका सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या साकार स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? हैं? सूक्ष्म शरीर में बहुत ताकत होती है, इसलिए वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत जिसमें भी प्रवेश करते हैं उसको दबोच लेते हैं आत्मा, और भगवान जिसमें प्रवेश करता है उसको सूक्ष्म शरीर तो है ही नहीं, वो तो हल्की फुल्की आत्मा है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है उस मुकर्रर रथ को भी पता नहीं चलता कब आया कब चला गया, बाद में पता चलता है कि ऐसा ज्ञान तो मेरी बुद्धि में कभी आया ही नहीं जो मैंने सुनाया। तो जरूर कोई शक्ति है, जिस तन में आएगा उसका चेहरा मोरा भी नहीं बदलता, एक्ट भी नहीं बदलती, भाषा भी नहीं बदलती, दृष्टि का कोष भी नहीं बदलता। साधारण तन में आते हैं तो साधारण कर्म ही करते हैं मनुष्यों की तरह, तो भगवान की प्रवेशता में और मानवीय आत्माओं की प्रवेशता में जो भूत प्रेत बनती है पाप कर्म करने के कारण, जमीन भी आसमान का अंतर। धर्म पिताएं आकर के अपना उपदेश देते हैं, दुनिया तो नरक बनती जाती है, मनुष्य की गिनती जाती है, यहां तक मेंटेलिटी देती है, ईर्ष्या देश बढ़ता है मनुष्य मनुष्य में, कैटम बम बना के रख लेते हैं दुनिया का ध्वंस करने के लिए। बुद्धि ऐसी तामसी बन गई, ये भी याद नहीं रहता कि जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया को भस्म करने का सामान तैयार कर दिया, और ये सामान वो अपनी अकल से तैयार नहीं करते। वास्तव में 1936-37 में जब भगवान आया था इसी समय से ये कार्य शुरू हुआ है आत्मिक जीवन बनाने का। उससे पहले किसी मनुष्य की बुद्धि में आत्मिक एनर्जी का नाम निशान भी नहीं था, क्योंकि तो भगवान आते हैं तो त्रिदेव के साथ आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं एक साथ तो प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु होते तो जरूर है, इसलिए त्रिमूर्ति सेवा कहा जाता है। एक मूर्ति सेवा नहीं, दो मूर्ति सेवा नहीं, त्रिमूर्ति सेवा। देवताओं में अगर कोई बड़े से बड़े हैं तो तीन देवताएं, तो ब्रह्म द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, जो ब्राह्मण संपूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद नर से नारायण जैसे देवताएं बनती हैं, सब तो नहीं बनते, नौ गुरु के ब्राह्मण बनते होंगे हैं? बनेंगे नहीं, जो अव्वल नंबर पुरी के ब्राह्मण हैं, वही अव्वल नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना में भगवान के सहयोगी पूरे पूरे बनते, जिनको कहा जाता है ज्ञान सूर्य की औलाद, सूर्यवंशी बच्चे। तो सूर्यवंशी बच्चे बड़े विरल निकलते हैं, आसमान के सितारों से उनकी मानंद बताते हैं, आसमान में ऊंचे से ऊंची स्टेज में चमकने वाले सितारों की संख्या कितनी, 9 लाख बताते हैं। वो दो प्रकार के सितारे हैं, एक दिन में चमकने वाले नहीं है लेकिन हैं जरूर, वो अपनी रोशनी को अपने मान मर्तव्य को भगवान बाप के मान मर्तव्य में मर्ज कर देंगे, जो परंपरा आज तक भी चली आ रही है। कोई फर्म बनाते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट बना देंगे तो नाम रखेंगे बाप का नाम पहले और फिर बाद में एंड सन, बच्चों का नाम नहीं देंगे। ये परंपराएं भगवान के समय से चली आ रही श्रेष्ठ परंपराएं हैं, बच्चा वो जो बाप को फॉलो करे, फॉलो फादर एंड मदर। तो भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर के सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते हैं, उनके स्तर पर अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर चंद्रमा दिखाते हैं, अधूरा चंद्रमा। अधूरा का मतलब है कि शरीर रहते रहते अधूरा को साथ करके छोड़ के चले जाते, और वो आत्मा शंकर के शरीर में प्रवेश करती है, चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है, परंतु अधूरे चंद्रमा को भी थोड़ा गला संपूर्ण बनना तो है, परंतु वो सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए शास्त्र में ऐसा चित्र बताया है, दिखाया है, शंकर ने कृष्ण को अपनी गोद में आकर के लिया, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। शंकर के द्वारा जो गायन है हर हर बम बम 1936 से ही बम की स्थापना शुरू हो जाती है। बम का निर्माण शुरू हो जाता है। एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान बम और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में एटमिक बम। नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया के ध्वंस करने का मसाला भी तैयार हो जाता है। पहला एटमिक विश्व युद्ध 1944-45 में हुआ था। वो तो छोटी छोटी बम्बियां थी, अभी तो बड़े बड़े बम तैयार हो चुके हैं और हर देश इस दौर में आगे गुप्त रूप में बनाते जाते हैं। जो गीता में दिखाया गया है दंसा तराना चटे रुखाने, भगवान की दाढ़ें हैं जो आसमान में भी तैर रही है, समंदर के अंदर भी तैर रही है। बम समंदर के अंदर भी है, आसमान में भी तैर रहे हैं। इन तारों के बीच में सारी दुनिया तबाही जाने वाली, परंतु ये चतुर्थ विश्व युद्ध तो बाद में होगा, जिसमें सारे विदेश समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। आज से 2500 साल पहले ये समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। एक भारतीय था इस धरती पर, 2500 वर्ष के अंदर ये अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जितने भी विदेशी धर्मखंड हैं, चाइना, बौद्ध धर्मखंड, ये समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। अमेरिका की हिस्ट्री 500 वर्ष पूर्व शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया 300 वर्ष पहले से मिलती है। ये विनाशी धर्मखंड है। जब एटमिक विस्फोट सारी दुनिया में होंगे तो एक तरफ एटमिक विस्फोट हो रहे होंगे एक एक शहर में और दूसरी तरफ आत्मा रूपी दीपक जग रहे होंगे। यादगार दीपावली मनाई जाती है। उससे पहले रावण की मृत्यु के रूप में दशहरा मनाया जाता है, ये भारत में मनाया जाता है। भारत में ही ये महाभारत गृह युद्ध हुआ था 5000 साल पहले, परंतु गलती से महाभारत युद्ध को द्वापर युग में डाल दिया गया 7 प्रकारों के द्वारा। वास्तव में ये जो मनुष्य शक्ति है उसकी हिस्ट्री 2500 साल की ही मिलती है, प्रूफ है, प्रमाण है। उससे पहले के कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं है। ये हिस्ट्री बनाई ही तब जाती है जब आदमी दुखी होता है, द्वापरयुग से द्वैतवाद शुरू होता है, जब दुख पड़ता है तो आदमी एक एक दिन गिनता है या नहीं गिनता है? एक एक दिन गिनना भारू हो जाता है। इब्राहिम आया, मोहम्मद आए, लाइक आया, उनके संबत शुरू हो गए। विक्रमादित्य आया, विक्रम संबत शुरू हो गए। हिजरी संबत शुरू हो गया। ये 2000 वर्ष की हिस्ट्री है दुखों की दुनिया की। ये अंधकार की दुनिया है। अंधकार में सच्चा रास्ता किसी को पता नहीं चलता। आत्मा का कल्याण कैसे होगा पता ही नहीं चलता। जो कुछ भी पता चलता है, जो ज्ञान की वृद्धि होती है, वो भौतिक बात की होती है। पंचभूतों की, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंचभूतों से बना हुआ ये भौतिक शरीर, ये जड़त्व में ही दुनिया का ज्ञान है मनुष्यों के पास। लेकिन इस जड़त्व में ही शरीर के अंदर, इस मिट्टी के चोले के अंदर, इसको चलाने वाली शक्ति कौन है, उसके बारे में सब अंधकार में आ जाते। जो गीता में बताया है, जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान के दिन में जीते हैं, अज्ञानी अंधकार में जीते हैं। भौतिक दुनिया का अंधकार, जो ज्ञानियों का दिन होता है वो अज्ञानियों की रात होती है। ज्ञानियों का दिन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, मनुष्य आत्मा इस चक्र में कैसे चक्र लगाती, इन बातों में बुद्धि रमण करती है। इन बातों में रमण करने वाली बुद्धि वालों को कहा जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कर्म ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, बाकी सब शूद्र दुनिया। आज से 500 साल पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया, भय वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए, शुद्ध हो गए। शूद्रों को भगवान आकर के इस समय ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया है। ये ब्राह्मणों की शक्ति गुप्त रूप में रखी जा रही है, जैसे पांडवों का गहन है। पांडव गुप्त रूप में घूमते थे, गुप्त पुरुषार्थ हो रहा है। किसके लिए? द्वापर युग से और धर्म में हिंदू कन्वर्ट हो गए थे, उनके लिए खास भगवान आकर के ज्ञान देता है। जैसे उन धर्म में कन्वर्ट हुए थे, वैसे ही आकर के इस देवी देवता सनातन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान को पकड़ लेते हैं और अभी पकड़ रहे हैं। ओ